समाज के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। रुकुम कहने लगा, पिताजी पागल हो गए हो,
पागल हो गए हो। सिंदूर उजड़ जाएंगे, लाखों माताओं की गोदियां खाली हो जाएगी। अगर द्वारकाधीश का नहीं आया घर में आया तो
भीष्म कुछ भी नहीं कह पाएगा, बैठे रहे। रुकुम ने खत लिख दिया, चंदेली के रहने वाले हमारे शाली शिष्यपाल सादर से नमस्ते, आना है फौज को लेकर के आना है, क्योंकि हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में कर रहे हैं। पिताजी इस बात पे राजी नहीं है, एक भी भाई हमारे साथ में नहीं है, केवल मैं अकेला कर रहा हूँ। खत लिख करके नाई और ब्राह्मण को दे दिया। नाई और ब्राह्मण खत लेकर के जब चले हैं, शिष्यपाल के जब करीब पहुंचे हैं चंदेली में, और जब चंदेली में पहुंचे हैं, शिष्यपाल ने पूछ दिया, भाई कहां से आए हो?
मैं
हाँ
हमें तो रुकुम ने भी
आहा, क्यों नहीं भेजा होगा? हाँ, जरूर भेजा होगा, क्योंकि वो हमारे बहनोई है और उन्हें हमारे बिना तो चैन ही नहीं पड़ता है। और चैन कैसे पड़े, मैं उनका अकेलाता साला हूँ। खैर क्या संदेश है?
बोले चिट्ठी पढ़ करके देख लो।
जैसे ही खत को पढ़ा, शिष्यपाल बहुत मगन हो गया। ब्राह्मण कहने लगे, बड़े मगन हो गए, क्या बात है भाई, क्या तुम रुक्मिणी के साथ में शादी करोगे? शिष्यपाल कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे भाई।
क्योंकि हमारे बहनोई की बहन इतनी सुंदर है, किसी अंधेरी सी जगह पे खड़ा कर दो तो रोशनी की कोई जरूरत। चेहरा चंद्रमा की भांति चमक रहा है। खैर एक काम करो, तुम जाओ
इधर। शिषपाल ने खत लिखा एक मौसी के लड़का दंत वक्र के लिए
और एक खत लिख दिया जरा सिंह के लिए।
फौज को लेकर के आना है। जरा सिंह ने खत देखा, कन्हैया का नाम देखा, हिल गई।
हो गई शादी, पागल हो गया शिषपाल। कन्हैया के सामने जब मेरी पेश नहीं गई, मुझे तो उसने 17 बार हराया, इसकी क्या पेश है। खैर हमें क्या करना है, बारात में जाना है, चलेंगे भाई, व्यवहार तो अदा करना है।
इधर शिषपाल पहुंच गया भाभी के पास में। भाभी हमें दूल्हा बनाओ।
हाँ दूल्हा।
तुम्हें मालूम है हमारी बहनोई की बहन है, रुक्मिणी उसका नाम है।
इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अरे इतनी सुंदर है, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और तुम्हें अगर प्रशंसा करके सुनाएंगे तो तुम्हें बड़ी जलन होगी।